नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बृहस्पतिवार को हुए विधानसभा चुनाव में से किसी भी केंद्र पर पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई है। आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के 44,000 से अधिक मतदान केंद्रों में से किसी में भी पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं हुई है। राज्य में बृहस्पतिवार को पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा था, इसलिए किसी भी बूथ पर दोबारा मतदान की आवश्यकता नहीं है। पहले चरण में राज्य के 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हुआ था, इसमें रिकॉर्ड 92% से अधिक वोट पड़े थे। उधर तमिलनाडु में भी सभी केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा और इसलिए दोबारा मतदान कराने का कोई कारण नहीं है। राज्य में विधानसभा की 234 सीटों के लिए 85% से अधिक मतदान हुआ था। इस बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। ओडिशा विधानसभा में भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका पर विचार विमर्श के लिए 30 अप्रैल को एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। सत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। इस दौरान शासन और नीति निर्माण में महिलाओं के योगदान, चुनौतियों और अवसरों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। इसमें समावेशी राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने पर बल दिया जाएगा। यह सत्र विशेषकर महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर व्यापक राष्ट्रीय चर्चा के बीच आयोजित हो रहा है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए मौजूदा मौसम का लक्ष्य 15% बढ़ाकर 3,45,00,000 टन कर दिया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि यह निर्णय उन किसानों की सहायता के लिए उठाया गया है जिनके फसलों को बेमौसम बारिश से नुकसान पहुंचा है। कल नई दिल्ली में रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक गेहूं सर्वेक्षण के अवसर पर श्री चोपड़ा ने कहा कि अब मध्य प्रदेश से 1 करोड़ टन, उत्तर प्रदेश से 2.5 करोड़ टन, राजस्थान से 23,50,000 टन और उत्तराखंड से 5,000 टन गेहूं की खरीद होने की संभावना है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची कल देर रात अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्ति के लिए ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता फिर से शुरू करने के लिए राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं।
ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के लिए रवाना होने से पहले कहा कि वे क्षेत्रीय घटनाक्रम पर परामर्श के लिए पाकिस्तान, ओमान और रूस की यात्रा कर रहे हैं। इस वार्ता में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई भी शामिल होंगे। श्री बाकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की चिंताएं पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका तक पहुंचाई जाएंगी। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के इस्लामाबाद पहुंचने की संभावना है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वॉशिंगटन से जुड़े रहेंगे और विदेश मंत्री मार्को रूबियो तथा राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ समन्वय करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान अमरीकी मांगों को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव देने की तैयारी कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
अमेरिका ने चीन की एक बड़ी तेल शोधक कंपनी हेंगली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी और ईरान के तेल की ढुलाई से जुड़ी लगभग 40 कंपनियों और टैंकरों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये कदम ईरान से तेल निर्यात को सीमित करने के लिए उठाया गया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कुछ सप्ताह बाद ही अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चीन में बैठक होनी है। गौरतलब है कि अमरीका वैश्विक कच्चे तेल की ढुलाई के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी जारी रखे हुए है। आकाशवाणी के 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक नई सिग्नेचर ट्यून बनाने की प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसका उद्देश्य आकाशवाणी के विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए ऐसा संगीत तैयार करना है जो विषय वस्तु के अनुरूप हो, श्रोताओं को आकर्षित करे। सभी धुनें केवल वाद्य संगीत पर आधारित होनी चाहिए। ये धुनें MP3 या WAV फॉर्मेट में स्वीकार की जाएंगी। प्रथम पुरस्कार विजेता को 30,000 रूपये, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 20,000 रूपये और तृतीय पुरस्कार पर 10,000 रूपये दिए जाएंगे। आकाशवाणी ने जिंगल बनाने के लिए भी प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। ये FM गोल्ड, FM रेनबो और विविध भारती के विशेष संदर्भ में हैं। जिंगल की भाषा हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए। महिला T20 क्रिकेट के 5 मैचों की श्रृंखला के 4th मैच में आज भारत का सामना मेजबान दक्षिण अफ्रीका से होगा। जोहानिसबर्ग में ये मैच रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।